पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी और रिया ने बात की और जेसिका आर्यन और आर्यन के बीच के रिश्ते से जल रही थी और विक्रांत को अपनी योजना के विफल होने का डर था। इस अध्याय में आर्यन को ऑफिस में जय की कस्टडी के लिए सबूत खोजने की बात की जाती है और विक्रांत और जेसिका मिलकर आर्यन के खिलाफ एक योजना बनाते हैं। शिव मेहता रिया के बारे में परेशान है और इंदर के साथ बात करता है। सानवी आर्यन की पुरानी तस्वीरें देखती है। नाउ नेक्स्ट। और उसने तुमसे कहा कि वो अमीर है?
नहीं, शिव ने कहा, बस मुझे ऐसा लगा कि वो खुद को वैसे दिखा रही थी।
देखो यार, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहता हूँ, इंदर ने कहा। ये जो तीनों लड़कियां हैं, इंदर का मतलब सानवी, रिया और कृति से था, बहुत सिंपल सी लड़कियां हैं, काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं और बस, कोई बनावटीपन नहीं है। हाँ, कृति में जरूर थोड़ा बचपना है। वैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए, इंदर सानवी पर इस तरह से लट्टू था कि वो कभी सानवी के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकता था। जब सानवी उसे अच्छी लगती थी तो उसकी सहेलियां भी उसे अच्छी ही लगती थीं।
रिया बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, शिव मेहता ने कहा।
मैं उसे नफरत करता हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसने धीरे से कहा। इंदर को समझ आ गया कि शिव को रिया से प्यार हो चुका है, मगर कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें उसे दूर करना होगा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ पीने को लेकर आता हूँ, इंदर ने कहा और किचन की तरफ चला गया। वो वहां जाकर आलिया और कृति को फोन लगाता है और दोनों को बताता है कि यहाँ क्या चल रहा है, शिव रिया के बारे में क्या सोचता है। दोनों ही तुरंत आने के लिए तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद इंदर कॉफी लेकर ड्राइंग रूम में आता है, जहाँ शिव मेहता बैठा होता है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। कृति और आलिया दोनों वहां पहुंच जाती हैं। शिव मेहता ने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों तो रिया को अच्छी तरह जानती हो ना?
बिल्कुल, कृति बोली।
मैं भी उसे जानती हूँ, आलिया ने कहा।
वो बहुत झूठी लड़की है, शिव बोला।
नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, आलिया ने जवाब दिया। पता नहीं कैसे तुम्हें गलतफहमी हो गई, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब जानते हैं उसके बारे में, इंदर बोला। असल बात यह है कि इसे रिया से प्यार हो गया है और जो गलतफहमी इसके मन में है वही इसे परेशान कर रही है, अब इसे ठीक करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें दोनों को इसीलिए बुलाया है कि तुम दोनों इनकी लव स्टोरी बना दो। दुआएं मिलेंगी, शायद तुम दोनों की भी लव स्टोरी बन जाए, इंदर ने हंसते हुए कहा।
तो तुम मुझ पर हंस रहे हो? शिव मेहता गुस्से में बोला।
अरे नहीं, बात सुनो, कृति ने कहा, प्यार तो रिया को भी हो चुका है।
सच? शिव ने हैरानी से पूछा।
हाँ, आलिया बोली, वो कितने दिनों से रो रही है, कहती है पहली बार किसी लड़के को पसंद किया और हमारे बीच गलतफहमी हो गई, वो बहुत परेशान है।
सचमुच? शिव ने दोहराया।
और नहीं तो क्या, आलिया ने कहा। देखो, गलतफहमी तुम्हें हुई है, हम लोग शुरू से ही रिया को जानते हैं, इसलिए अब वो गलतफहमी दूर करो, फिर मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगी। इंदर, आलिया और कृति तीनों ने मिलकर प्लान बना लिया था कि अब वे रिया और शिव को मिलवाएंगे, जो भी हो दोनों की लव स्टोरी को पूरा करवा कर ही दम लेंगे। उधर आर्यन की तबीयत घर पहुंचते पहुंचते बहुत बिगड़ गई थी। रात को वो ठीक से सो नहीं पाया, गला भी बहुत खराब था, इसीलिए वो बेहद डिस्टर्ब था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। उसने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और आराम करने का फैसला किया। उसने उठते ही सबसे पहले ऑफिस में फोन लगाया। मैं दोपहर के बाद ऑफिस आ रहा हूँ, तो प्लीज मेरा शेड्यूल उसी हिसाब से सेट कर देना। आर्यन को अपना ऑफिस मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी घर पर रुकना पड़ा। वो थोड़ा परेशान भी था। सानवी की शेफ की क्लास आज जल्दी खत्म हो गई। जो वो आमतौर पर दोपहर के बाद आती थी, आज जल्दी चली आई। उसे लगा, चलो मैं भी जल्दी काम निपटा लूं। वो सीधा हॉल से होती हुई हमेशा की तरह अपने किचन में आई और खाना बनाने लगी। तभी आर्यन राजवंश के कुछ कपड़े, जो ड्राई क्लीनिंग के लिए गए थे, वापस आ गए। सिक्योरिटी का एक आदमी वो सामान सानवी को पकड़ा गया। सानवी पहले घर की सफाई का काम किया करती थी, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। कानों में हेडफोन लगाए हुए हमेशा की तरह अपना काम करती रही। उसने अपने हेडफोन कानों से हटाए नहीं थे, वैसे ही गाने चलने दिए। उसे लगा था कि आर्यन ऑफिस चला गया होगा, इसलिए वो आराम से अपना काम निपटा रही थी। अचानक उसे याद आया कि ड्राई क्लीनिंग से आर्यन के कपड़े आए थे। सोचा, चलो रख ही दूं, वैसे भी कपड़े रूम में फैले रहेंगे तो मुझे ही परेशानी होगी। वो हाथ पहुंचकर कपड़े उठाती है और सीधे आर्यन के कमरे की ओर चली जाती है। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की सी रोशनी थी। बिस्तर जैसे सुबह पड़ा था वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा था। तकिए बिखरे हुए, कुर्सी पर एक शर्ट टंगी और टेबल पर खुली फाइलें। सानवी ने भौहें चढ़ाई। ये सफाई वाली तो दिन पर दिन लापरवाह होती जा रही है। अगर आर्यन ने देख लिया ना तो पक्का डांट पड़ेगी। उसने धीरे धीरे बिस्तर के कोने ठीक करने शुरू किए। उधर वॉशरूम के अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी, पर सानवी के कानों में म्यूजिक चल रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी दरवाजा खुलने की हल्की क्लिक हुई और आर्यन बाहर आया। उसने सानवी को कमरे में देखा, बाल हल्के से खुले, हाथों में तौलिया पकड़े हुए वो कुछ पल उसे देखता रह गया। सानवी, रहने दो, उसने कहा। आवाज शांत थी लेकिन थकी हुई। सानवी ने कुछ नहीं सुना, हेडफोन में म्यूजिक बजता रहा। वो तकिया उठाकर सीधा करने लगी। आर्यन ने थोड़ा पास आकर फिर कहा, सानवी छोड़ो, रहने दो। फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिरकार उसने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। सानवी, वो चौंक गई, हल्की सी चीख उसके गले में अटक गई। अरे आपने तो डरा ही दिया, उसने झट से हेडफोन निकाले। आर्यन मुस्कुराया, सॉरी, बस कहना था कि रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। आप घर पर हैं, उसने हैरानी से पूछा। हाँ, आज तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए ऑफिस नहीं गया। सानवी ने उसकी शक्ल देखी, चेहरा थोड़ा पीला था, आंखों के नीचे थकान के निशान। वो अपने कमरे से निकलकर हाल में आ गया। आर्यन सोफे पर बैठा था, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सानवी ने उसे देखा, फिर धीरे से बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे पी लीजिएगा, इससे राहत मिलेगी। आर्यन ने हल्का सा सिर उठाया। नहीं सानवी, रहने दो, काढ़ा और मैं कभी नहीं बने, उसके लहजे में थकान के साथ थोड़ा बचपना भी था। सानवी मुस्कुराई, आपको पीना ही पड़ेगा, मना करने से तबीयत ठीक नहीं होती। मुझे दवाई से नहीं, आराम से फर्क पड़ता है। तो ठीक है, सानवी बोली, काढ़ा भी आराम से ही पिलाऊंगी। वो किचन की तरफ बढ़ी। किचन में अदरक, तुलसी और हल्दी की खुशबू फैलने लगी। सानवी उबलते पानी में सारी जड़ी बूटियां डाल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की भाप गिर रही थी और बालों की कुछ लटें गाल से चिपक गई थी। वो अनजाने में मुस्कुराई। कभी कभी किसी की फिक्र करना भी अच्छा लगता है। आर्यन हॉल में बैठा उसे किचन में काम करते हुए देख रहा था। उसने सोचा, इतनी सादगी में भी ये इतनी खूबसूरत कैसे लगती है। थोड़ी देर बाद सानवी ट्रे लेकर आई। लीजिए, गर्म है, ध्यान से। आर्यन ने कप लिया, एक घूंट लिया और तुरंत चेहरा बना लिया। उफ, ये जहर है क्या? सानवी हंस पड़ी। हाँ, आपके जैसे जिद्दी मरीजों के लिए ही तो बनाती हूँ। मैं जिद्दी नहीं, सावधान हूँ। अच्छा, सावधान तो फिर इसे पी जाइए। नहीं, पीजिए। आर्यन, आर्यन, दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर सानवी ने कप उसके हाथ में रख दिया और बोली, मैं यहीं खड़ी हूँ जब तक आप पी नहीं लेते। आर्यन ने मजबूर होकर काढ़ा पिया। वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अब खुश? सानवी हंसते हुए बोली, बहुत। वो ट्रे उठाकर जाने लगी तो आर्यन ने धीमे से कहा, सानवी शुक्रिया। सानवी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और वापस किचन चली गई।
पीछे आर्यन ने सिर टिकाया, आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, शायद ये लड़की सिर्फ मेरे घर में नहीं, मेरी जिंदगी में भी थोड़ा सुकून लेकर आई है।